You're listening to an HD Smartcast original.
क्या आप भारत की अकेली ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो उल्टा बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है? ऐसी पवित्रतम नदी जिसके कंकर कंकर को शंकर होने का वरदान प्राप्त है। इस नदी के संबंध में ये कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष एक बार समस्त प्राणियों का पाप धोने से मैली हुई गंगा नदी भी कोयले के समान एक काली गाय के रूप में इस नदी में स्नान करने के लिए इस पावन भूमि पर आती है और इनके जल से स्नान करके श्वेत रंग की गाय के रूप में वापस लौट जाती है। ये शिव की पुत्री कही जाती हैं और इनका उद्गम स्थान माता सती का शक्ति पीठ है। यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं नर्मदा नदी के विषय में बात कर रही हूँ। नर्मदा नदी जिसे शांकरी भी कहा गया और महादेव को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और 51 शक्तिपीठ विद निष्ठा के इस एपिसोड में हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में, जहाँ अमरकंटक में देवी माँ के दो शक्तिपीठ स्थापित हैं। अमरकंटक तीन प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जिनमें से दो शक्तिपीठ स्थल से निकलती हैं। काल माधव शक्तिपीठ में माता सती के बाएं नितंब का पाठ हुआ था और यहाँ से सोन नदी प्रकट हुई। यहाँ की शक्ति है माँ काली और भैरव को अतिसांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है सोन देश शक्तिपीठ, जहाँ माता का दायां नितंब गिरा था और यहाँ से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ की शक्ति है माँ नर्मदा और भैरव को भद्रसेन के नाम से पुकारा जाता है। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन आता है, नितंब काल माधवे भैरवश्च अतिसांगश्च देवी काली सुसिद्धिदा। कहते हैं कि इन स्थलों पर मांगी गई हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यहाँ पर साधना करने वाले को सहज ही ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। इस स्थान का महत्व ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से है। समुद्र तल से लगभग 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्याचल की सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। ये क्षेत्र अत्यंत ही सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ के हर कोने में बिखरी पड़ी है, क्योंकि आद्य शक्ति का यहाँ हमेशा ही वास रहा है। सतयुग में यहाँ माता के श्रीअंगों के निपात से ये भूमि अत्यंत पावन हो गई। फिर भगवान शिव ने यहाँ तप किया, फलस्वरूप पुत्री नर्मदा का उद्गम हुआ। नर्मदा नदी का उद्गम सोन देश शक्ति पीठ के एक कुंड से होता है और सोन नदी का उद्गम काल माधव शोणाक्षी शक्ति पीठ के कुंड से होता है। इनका उद्गम स्थल देखने वाले लोग आश्चर्य से भर जाते हैं कि एक कुंड से इतनी वृहद नदियाँ कैसे निकल सकती हैं? ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा है? इन मंदिरों का विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। आओ पहले आपसे नर्मदा का जन्म कैसे हुआ और वो उल्टी दिशा में क्यों बहती है, इसकी कथा कहती हूँ। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के रूप में जाना जाता है, इसलिए नर्मदा को शांकरी भी कहते हैं। नर्मदा एक कुमारी नदी है, इनका विवाह नहीं हुआ है। ये सदैव भगवान शिव की तपस्या में रत रहती हैं। एक कथा के अनुसार लोक कल्याण करने के लिए भगवान शंकर तपस्या करने के लिए मैकाल पर्वत पर सोन देश शक्ति पीठ पहुँचे। उनके पसीनों की बूंदों से इस पर्वत पर एक कुंड का निर्माण हुआ। इस कुंड में एक बालिका उत्पन्न हुई जो शंकरी व नर्मदा कहलाई। शिव के आदेश अनुसार वह एक नदी के रूप में देश के एक बड़े भूभाग में रव यानी आवाज करती हुई प्रवाहित होने लगी। रव यानी आवाज करने के कारण इसका एक नाम रेवा भी प्रसिद्ध हुआ। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। मैकाल पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण वो मैकाल सुता के नाम से भी जानी जाती है। नर्मदा नदी का पालन पोषण राजा मैखल ने किया। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि जो व्यक्ति गुलब कावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी ये फूल लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोनभद्र ने इस फूल को लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वो एक बार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश देकर भेजा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सहेली जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वो उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वो सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। नर्मदा और सोन नदियों का ये उद्गम स्थल आदि काल से ही ऋषि मुनियों के निवास का स्थान रहा है। यहाँ की जलवायु इतनी मनोरम और मनमोहक है कि यहाँ तीर्थ यात्रियों का ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों का भी तांता लगा रहता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 10 घंटे और 547 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर में बसा अमरकंटक नामक कस्बा समुद्र तल से लगभग 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में स्थित एक शांत कस्बा है। यहाँ की जलवायु गर्म एवं ठंडी है। यहाँ गर्मियों में तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं। ये प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है। यहाँ वन संपदा की भरमार है। यही मैकल पहाड़ियों की गोद में काल माधव शक्तिपीठ और शोनाक्षी शक्तिपीठ स्थित हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। आइए पहले सोनदेश शक्तिपीठ और नर्मदा के उद्गम स्थल को विस्तार से जानते हैं। यदि आप नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम स्थल को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इनका उद्गम स्रोत है क्या। एक छोटे से कूप में से ये पानी निकल रहा है। ये पानी आ कहां से रहा है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। और ये छोटी सी धारा आगे जाकर इतना वृहद रूप ले लेगी कि ना जाने कितने प्राणियों का पालन पोषण करेगी। ऐसा इनके उद्गम स्थल को देखकर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हरी भरी सुंदर पहाड़ियों को पार करते हुए कार से ही श्रद्धालु मैकल पर्वत पर सोनदेश शक्तिपीठ पहुंच जाते हैं। इस स्थान पर पहुंचकर ही मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मंदिर के पास ही कार पार्क करके प्रसाद लेकर मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। सोनदेश शक्तिपीठ की रचना, कलाकृति और स्थापत्य अत्यंत उत्कृष्ट है। मंदिर का निर्माण सफेद पत्थरों से किया गया है। हरी भरी पहाड़ियों की चोटी पर सफेद रंग के तालाबों से घिरा हुआ ये माता का स्थान देखकर ही समझ में आता है कि क्यों भोलेनाथ ने यहाँ तपस्या की होगी। ऐसा लगता है कि मानो आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। बड़ी सी सफेद रंग की बाउंड्री वॉल वाले इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माँ नर्मदा और भोलेनाथ का चित्र बना है। दीवारों पर राजस्थानी शैली की कलाकृतियों में खिड़की और आलय बने हुए हैं। अंदर प्रवेश करते ही बड़ा सा परिसर है। परिसर में तालाब और सफेद रंग के लाल झंडों वाले बहुत से मंदिर शिखर आपको यहाँ दिखाई देंगे। आइए पहले माता के दर्शन करते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही माता का शक्तिपीठ स्थित है। इसके द्वार पर इनके भैरव विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता की दो सुंदर मूर्तियां विद्यमान हैं। माता का स्थान चांदी से बना हुआ है। मुख्य मूर्ति सफेद पत्थर से बनी है और बड़ी है। उन्होंने सोने का मुकुट और लहंगा पहना है। उनके सामने ही आपके बाएं हाथ पर दूसरी मूर्ति रखी है जो काले पत्थर से बनी है। माँ के दर्शनों से हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ का ये स्वरूप बहुत ही आनंददायक है। आइए अब माँ नर्मदा के उद्गम स्थल पर चलते हैं। जिस स्थान से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है वो स्थान नर्मदा कुंड कहलाता है। इस कुंड के अंदर ही देवी नर्मदा की मूर्ति स्थित है। ये कुंड इस शक्तिपीठ मंदिर का केंद्र है। नर्मदा देवी का मंच चांदी से बना हुआ है। देवी नर्मदा के दोनों किनारों पर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। ये स्थान सुनहरे मुकुट से घिरा हुआ कहलाता है। शक्तिपीठ मुख्य द्वार के सामने एक हाथी और एक घोड़े पर सवार देवों की मूर्ति विद्यमान है। ये दोनों एक दूसरे के पास थोड़ी सी दूरी पर ही स्थित हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन दोनों के बीच में से निकल जाता है वो माँ को दंडवत प्रणाम देता है। माँ उसकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। ये देखकर आश्चर्य होता है कि अच्छे से अच्छे कद काठी वाले लोग भी इस छोटी सी जगह को पार कर लेते हैं। ये स्थान अपने आप में ही बहुत सुंदर है। कहते हैं कि पास ही बहती सोन नदी और पास के कुंड के सुखद दृश्य को कोई भी नहीं भुला सकता। पर्वत श्रृंखलाओं और हरी भरी घाटियों का दृश्य इस स्थान को एक सुरम्य और आकर्षक स्थल बनाता है। इस खूबसूरत जगह से आप मंत्र मुग्ध कर देने वाले उगते हुए सूरज को भी देख सकते हैं। इतने सुंदर शक्तिपीठ के दर्शनों के बाद आइए अब काल माधव शक्तिपीठ के दर्शनों को चलते हैं। सोनदेश शक्तिपीठ या नर्मदा के उद्गम स्थल से 1.5 किलोमीटर पहले की चोटी पर स्थित है काल माधव शक्तिपीठ, जहां एक कुंड से सोन नदी का उद्गम होता है। ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में सूचीबद्ध है, जिसकी स्थापना लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुई है। सीढ़ियां चढ़कर पर्वत की चोटी तक पहुंचते हैं और पहले सोन नदी के उद्गम स्थल के दर्शन करते हैं। यहां एक कूप में से पहाड़ी के अंदर से ही जल आ रहा है और ये गोमुख से एक छोटी सी धार की तरह बाहर निकल रहा है। फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये पहाड़ी से नीचे गिरता है और एक वृहद सोन नदी का रूप ले लेता है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक नजारा है, कैसे एक छोटे से कुंड से निकलता हुआ जल इतनी बड़ी नदी का रूप ले सकता है। माना जाता है कि इस पुण्य क्षेत्र के दर्शनों से देवी अपने सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। शक्ति का ये पावन स्थल काफी सिद्ध और शुभ फल देने वाला है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग माता के इस पावन दरबार में आकर साधना आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ देवी के भक्तों का तांता लगा रहता है। सोन नदी के उद्गम स्थल के दर्शनों के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाते ही एक बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर है। पास ही श्री महंत बालकेश्वर गिरी जी की एक छोटी सी मूर्ति है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें औषधियाँ मिलती हैं। मुख्य शक्तिपीठ मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्त सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। मंदिर ऊंचाई पर है और वहाँ से आसपास के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। ऊपर जाते ही एक गुफा में माँ का मंदिर है। मुख्य गर्भगृह में देवी माँ दुर्गा और माँ कालिका की मूर्तियाँ स्थापित हैं। दोनों ही मूर्तियाँ परम आकर्षक हैं। देवी माँ ने मुकुट पहना है और मूर्ति के चारों ओर फूल बिछाए गए हैं। ये परम शांत स्थान है। यहाँ के शांत वातावरण में माँ के समक्ष बैठना आपकी सारी थकान और समस्त चिंताएं हर लेता है। माँ का सुंदर स्वरूप, यहाँ का सुंदर मौसम और सोन नदी की कलकल ध्वनि सब शब्दों के परे एक दैवीय अनुभव है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। काल माधव शक्तिपीठ और सोनदेश शक्तिपीठ में नवरात्रि और शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय मंदिर को पूरी तरह साफ करके फूलों से सजाया जाता है और मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। दोनों शक्तिपीठों के दर्शन के लिए हमें अमरकंटक पहुंचना होगा। अमरकंटक का निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा है, जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरकंटक का निकटतम रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या कार से अमरकंटक आसानी से पहुंच सकते हैं। काल माधव शक्तिपीठ के आसपास बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जैसे श्री यंत्र मंदिर, श्री नर्मदा मंदिर, जैन मंदिर, अखिलेश्वर महादेव मंदिर आदि। इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम चलेंगे माता की भक्ति में रचे बसे प्रदेश गुजरात में और दर्शन करेंगे माँ अम्बा शक्तिपीठ के। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया। एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।